ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष मिश्र से समाचार सुनिए। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने कल 6,798 करोड़ रुपए के अनुमानित लागत की दो रेल परियोजनाओं को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि बिहार में 4,453 करोड़ रुपए की लागत से रेल लाइन के दोहरीकरण को मंजूरी दी गई है। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए भी एक नई लाइन निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2,245 करोड़ रुपए होगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष क्षेत्र के लिए 1,000 करोड़ रुपए के उद्यम पूंजी कोष को मंजूरी दी है। प्रस्तावित कोष की अवधि 5 साल तक बढ़ाए जाने की योजना है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ कुछ क्षेत्रों में अपने मतभेदों को हल करने के लिए राजनयिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बातचीत कर रहे हैं। नई दिल्ली में कल चाणक्य रक्षा संवाद 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि वार्ता के बाद समान और पारस्परिक सुरक्षा के सिद्धांतों के आधार पर जमीनी स्थिति को बहाल करने के लिए व्यापक सहमति हासिल की गई है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने एक ट्वीट में कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ से परामर्श के बाद 11 नवंबर से न्यायमूर्ति खन्ना को भारत का अगला मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया है। जस्टिस खन्ना अभी उच्चतम न्यायालय में दूसरे वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। वे भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 13 मई 2025 को सेवानिवृत्त होंगे। भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ अगले महीने 10 नवंबर को सेवानिवृत्त होंगे। वे 9 नवंबर 2022 को देश के मुख्य न्यायाधीश बने थे। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि पिछले 75 वर्षों में उच्चतम न्यायालय वास्तविक रूप में लोक न्यायालय के रूप में विकसित हुआ है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह अनूठा यथार्थ जहां उच्चतम न्यायालय जन अदालत के रूप में कार्य करती है दुनिया में कहीं और नहीं है। उच्चतम न्यायालय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष साक्षात्कार में मुख्य न्यायाधीश ने विभिन्न विषयों पर अपनी अंतर्दृष्टि साझा की। इनमें आकाशवाणी में प्रस्तुतकर्ता के रूप में उनकी यादें भी शामिल थीं। साक्षात्कार आज रात 9:30 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी गोल्ड और अतिरिक्त फ्रिक्वेंसियों पर प्रसारित किया जाएगा। या हमारे ऐप NewsOnAIR, वेबसाइट newsonair.gov.in और हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज 8 वरिष्ठ मंत्रियों के साथ अंतर सरकारी परामर्श IGC की 7वीं बैठक में भाग लेने के लिए 3 दिन की यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं। आज सुबह उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चांसलर शोल्ज आज 7वें अंतर सरकारी परामर्श बैठक की सह अध्यक्षता करेंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बताया है कि भीषण चक्रवाती तूफान दाना ने भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और धामरा बंदरगाह के बीच भूस्खलन शुरू कर दिया है। यह प्रक्रिया कुछ देर पहले ही शुरू हुई है और उम्मीद है कि यह सुबह तक जारी रहेगी। वर्तमान में भूस्खलन के बिंदु पर हवाएं लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं, लेकिन पूर्वानुमानों से तीव्रता में नाटकीय वृद्धि का संकेत मिला है। हवा की गति काफी बढ़ने और 120 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंचने का अनुमान है। शक्तिशाली हवाओं के अलावा चक्रवात दाना के साथ केंद्रपाड़ा, भद्रक और आसपास के इलाकों में भारी वर्षा होने की उम्मीद है। मौसम विभाग ने संभावित तूफानी लहरों को चेतावनी दी है, जिससे तटीय इलाकों में बाढ़ आ सकती है। स्थानीय अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में निवासियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया सक्रिय की जा रही है। उत्तरी कश्मीर में बारामूला जिले के गुलमर्ग के बातापथरी इलाके में कल रात आतंकियों ने सेना के एक वाहन पर हमला कर दिया। श्रीनगर स्थित चिनार कोर के अनुसार गोलीबारी में 2 सैनिक और 2 कुली घायल हुए हैं। उन्हें इलाज के लिए भेजा गया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। कश्मीर घाटी में 1 सप्ताह से भी कम समय में यह दूसरा आतंकी हमला है। इससे पहले मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले के गंगनोर इलाके में आतंकवादियों ने 6 निर्दोष गैर स्थानीय लोगों और बडगाम जिले के एक डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।